दिन भर तारीख 13 जनवरी दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बढ़ रहे हैं भारत की सुरक्षा में जुटे सेना और अर्धसैनिक बलों के वीडियो, शिकायत खाने से लेकर उत्पीड़न तक।
हमें वीकली भेजा जाता था कि भाई आप फला अफसर के घर जाइए या वो गोल्फ ग्राउंड में जाइए, वहाँ फला बड़े साहब आ रहे हैं, बड़े लोग गोल्फ खेलेंगे, आप बॉल पकड़िए।
हज पर जाने वाले मुसलमानों को सब्सिडी मिले या नहीं, छिड़ी है बहस। विवेचना में याद करेंगे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लेफ्टिनेंट जनरल जेक फार्ज रफेल जैकब की कहानी।
Suppose he says, no, what do I do if he doesn't agree? I went in after 30 minutes. I asked him, do you accept this instrument to surrender?
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। थल सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने सेना के जवानों से कहा है कि वो अपनी शिकायतें सीधे उनके पास तक भेजें। इसके लिए सुझाव और शिकायत बॉक्स की व्यवस्था की जा रही है। हाल में अर्धसैनिक बलों के जवानों और सेना के एक जवान ने अपनी शिकायतें सामने रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। इसे लेकर पूरे देश में बहस शुरू हो गई। जनरल रावत ने सोशल मीडिया को दोहरी धार वाला हथियार बताते हुए कहा कि सेना के जवानों को पहले सेना के अंदर शिकायत निवारण प्रणाली का सहारा लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी में जारी तकरार के बीच दोनों गुटों की निगाहें अब चुनाव आयोग पर हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा जताने के लिए मुलायम सिंह यादव आज अपने वकील के साथ चुनाव आयोग पहुंचे और अपनी बात रखी। वहीं अखिलेश यादव की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने आयोग के सामने तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलील के आधार पर चुनाव आयोग आखिरी फैसला देगा। कपिल सिब्बल ने मीडिया को बताया,
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो साइकिल का सिंबल है वो उनको मिलना चाहिए, दैट इज समाजवादी पार्टी लेड बाय अखिलेश यादव। और दूसरी तरफ से मुलायम सिंह जी के वकील ने अपना पक्ष रखा। लगभग 5-5.5 घंटा बहस हुई और बहस के खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करें। चुनाव आयोग जो भी तय करेगी वो मंजूर होगा।
ये थे कपिल सिब्बल के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में तमिलनाडु के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। चेन्नई में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। जल्लीकट्टू के समर्थकों का कहना है कि ये अहम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। वहीं पशुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन इस परंपरा का विरोध करते रहे हैं। जल्लीकट्टू एक ऐसा खेल है जिसमें सांड को काबू करने की कोशिश की जाती है। इराक से मिली रिपोर्टों के मुताबिक मोसूल से इस्लामिक स्टेट को बाहर करने के अभियान में जुटी इराकी सेना ने अहम प्रगति हासिल की है। विशेष सेना दजला नदी के दूसरे पुल तक पहुंच गई है। ये पुल पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ता है। इराकी सेना मोसूल यूनिवर्सिटी में भी दाखिल हो गई है। वहाँ जोरदार संघर्ष की खबरें हैं। बीते 2 हफ्ते के दौरान सरकारी सेना ने शहर के पूर्वी हिस्से के बड़े भाग पर अधिकार हासिल कर लिया है। साइप्रस के एकीकरण के लिए जारी प्रयास के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रचेप तैयब अर्दोआन ने कहा है कि उत्तरी साइप्रस से सभी सैनिक नहीं हटाए जाएंगे। उन्होंने इस्तांबुल में कहा कि तुर्की के सैनिक वहां बने रहेंगे, तुर्की को समझौते की गारंटी देने वाले के तौर पर मौजूद रहना चाहिए। हालांकि जनेवा में संयुक्त राष्ट्र के दूत एस्पेन बार्थ आयद ने अर्दोआन के बयान को ज्यादा तूल नहीं दिया। उन्होंने कहा,
We are actually in a dialogue with Turkey on a constant basis here.
हम तुर्की के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल जो बातचीत हुई थी, हो सकता है उसे लेकर प्रतिक्रिया सामने आई हो। मुझे नहीं लगा कि बातचीत की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई दिक्कत है। मैं कहूंगा कि पड़ोस में जो कुछ हो रहा है वो याद दिलाता है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये थे संयुक्त राष्ट्र के दूत आयद के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारतीय विमान सेवा स्पाइस जेट ने कहा है कि उसका अमरीकी कंपनी बोइंग से समझौता हुआ है। इसके तहत स्पाइसजेट 205 विमान खरीदेगा। ये समझौता $22 अरब का है। ये बोइंग के साथ भारत में अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। रिपोर्टों के मुताबिक ये समझौता बोइंग के लिए काफ़ी अहम है। हाल ही में उसकी प्रतिद्वंदी एयरबेस के साथ इंडिगो समेत दो भारतीय विमान सेवाओं ने समझौते किए हैं। फ्रांस के अधिकारियों ने कार निर्माता कंपनी रेनो के खिलाफ जाँच शुरू की है। जांच इस बात की हो रही है कि कहीं रेनो ने डीजल वाहन के उत्सर्जन को लेकर गलत जानकारी तो नहीं दी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर और आज मैं हूं आपके साथ मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत से कर रहे हैं। बड़े अफसरों की मनमानी और खराब सुविधाओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों के लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। अब सेना के एक जवान का भी वीडियो सामने आया है। टीवी चैनल्स पर दिखाए जा रहे एक वीडियो में लांस नायक यज्ञ प्रताप ने अपने बड़े अधिकारियों पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बीबीसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यज्ञ ने अफसरों के व्यवहार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सवाल किया है कि जवानों से कपड़े धुलवाना और बूट पॉलिश करवाने को कैसे सही कहा जा सकता। उन्होंने कहा,
इतना परेशान करके रख दिए कि अगर आम सैनिक होता तो आया तो सुसाइड कर लेता या कुछ और गलत कदम उठाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं एक सैनिक हूं, लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी से निवेदन करता हूं कि मैं एक अप्लीकेशन ही तो लिखा था, ऐसा क्या गलत कर दिया जो हमारे कोर्ट मार्शल और हमारे चार सीट के लिए ये कमेटी बैठा रहे हैं।
वीडियो में जो आवाज़ आप सुन रहे थे ये लांस नायक यज्ञ प्रताप की थी। देश की सुरक्षा में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लगातार वीडियो सामने के आने के बाद बीबीसी दफ्तर में भारतीय फौज से सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर नेत्रपाल शर्मा आए। उनसे बात की नितिन श्रीवास्तव ने और पूछा कि उनका फौज में काम करने का सफर कैसा रहा।
मैं स्टार्टिंग में एज ए सिपाही क्राफ्टमैन कहा जाता है, तो एज ए क्राफ्टमैन मैं भर्ती हुआ था और मैं वहाँ जो फाइटिंग टैंक मैकेनिक वो मेरा ट्रेड था।
बतौर मैकेनिक आपने 30 साल नौकरी से ज्यादा नौकरी की फौज में।
जी।
कैसा रहा सफर, जो ये इस तरह की बातें आजकल आप मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, हर जगह बहस चढ़ी है कि जो जूनियर लेवल के लोग हैं फौज में वो अपनी दिक्कतें बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं खाने की दिक्कत है, कुछ लोग कह रहे हैं सर्विस कंडीशन की दिक्कत है, कुछ कह रहे हैं कि कथित तौर पर उनके अफसरों से उनको दिक्कत है। क्या आपको भी ऐसा कुछ दिखा कभी?
सब सुनकर एक तरफ घर में बहुत बड़ा दुख होता है, तो दूसरी तरफ ये बहुत खुशी भी होती है कि ये सब चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। ऑलरेडी आई हैव बीन विक्टिम फॉर दिस थिंग।
आप खुद इसके विक्टिम रहे?
जी जी जी।
30 साल आप विक्टिम रहे, आपने कभी किसी को बताया नहीं?
हमने बताया है।
किसको?
हमने वहाँ भी बताया, लेकिन अपने तरीके से बताया है, लेकिन डायरेक्टली आप सेना में रहते हुए अपनी बात नहीं कह पाते, नहीं कह सकते हैं। कहने को बहुत सारे प्लेटफॉर्म वहाँ बने हुए हैं, लेकिन उन सबका मिसयूज होता है और आप नहीं मुंह खोल सकते हैं, आप नहीं सही बात कह सकते हैं, आपको रॉन्गली एक्सप्लॉइट होना ही होता है।
आप एक्सप्लॉइटेशन का आरोप लगा रहे हैं?
बिल्कुल। देखिए साहब, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक सोल्जर जो फौज में भर्ती हुआ है वो देश की और देश की सेना की सेवा करने का जज्बा लेकर जाता है। एक्सप्लॉइटेशन बड़े ऊंचे दर्जे पर होता है और इससे न केवल फौज का मोराल डाउन होता है बल्कि देश और देश की सेना का नुकसान भी होता है। मैं आपको बताता हूँ कि आप एक ट्रेंड मैकेनिक को जिसके ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च करके, देश का फंड खर्च करके अगर तैयार किया जाता है, टैंक मैकेनिक बनाया जाता है, और उस ट्रेंड और स्किलफुल आदमी से अगर आप वो गोल ग्राउंड में अगर आप उसको बॉल उठा रहे हैं, आप उससे घास छिलवा रहे हैं।
क्या आपने उठाई बॉल?
मैं ये काम करते रहा हूँ।
कितने साल, कितनी दफे की?
जब हम ट्रेनिंग में थे स्टार्टिंग में, हमें वीकली भेजा जाता था कि भाई आप फला अफसर के घर जाइए या वो गोल ग्राउंड में जाइए, वहाँ फला बड़े साहब आ रहे हैं, बड़े लोग गोल्फ खेलेंगे, आप बॉल पकड़िए। केवल यही नहीं, उससे ज्यादा भी लोगों को जो ना लोगों को अपने घरों में भेज दिया जाता है।
लेकिन ये तो एक सिस्टम ही रहा है, उसको पहले बैटमैन कहते थे, फिर सहायक कहते हैं, वो तो एक परंपरा रही है।
देखिए, ये परंपरा का ही दोष है। विरासत मिली है ब्रिटिश आर्मी से, अंग्रेजों से जो विरासत मिली है वो आज योगी तो जिंदा है।
जब आप फौज में थे तो कभी ये सवाल क्यों नहीं उठाया आपने?
देखिए, हमने
क्या डर था किसी तरह का?
बिल्कुल डर रहता है आदमी को, अपने रोटी रोजी, अपने बच्चों का, अपने फ्यूचर का ध्यान रहता है, क्योंकि अगर वहाँ हम अगर कोई आवाज उठाते हैं और लोगों ने उठाई भी है तो उनका खामियाजा उनको भरना पड़ा है। लोग अलग अलग तरीके से ऑफिसर साहिबान ब्लॉडर का सहारा लेकर उसको मिसयूज करते हैं। मसलन आपको मेंटल डिसऑर्डर घोषित कर देंगे, आपको इंडिसिप्लिन घोषित कर देंगे, आपको जो ना वो कोर्ट मार्शल भी कर सकते हैं।
लेकिन एक फौज में भी एक तरीका है, फौज में भी एक सिस्टम बना है, फौज में भी अदालतें होती हैं, फौज में भी मुकदमे होते हैं और उनके फैसले भी होते हैं, तो क्यों नहीं लोग अभी तक बात उठाते रहे?
देखिए नितिन जी, फौज में और सिविल बाहर के प्लेटफॉर्म में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। फौज में जो कानून है वो सिंगल हैंड कानून है, एक हाथ से ताली बजती है।
और दूसरा हाथ किन लोगों का?
दूसरा हाथ है ही नहीं वहाँ। फौज में सिंगल हाथ है, ऑफिसर्स का हाथ है, उनके ही लॉ एंड ऑर्डर उनके अधिकार में है।
ये थे सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर नेत्रपाल शर्मा। लगातार बढ़ रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए देश के थल सेना प्रमुख बिपिन रावत ने आज एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया और जवानों से कहा कि अगर किसी बात को लेकर कोई शिकायत, सुझाव हो तो जवान सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा,
सो हियर ऑल आई विश टू हाईलाइट इज दैट ही हैड अ मैकेनिज्म इफ ही फेल्ट अग्रीव्ड दैट ही डिड नॉट वांट टू डू दिस जॉब।
थल सेना प्रमुख बिपिन रावत कह रहे थे, मैं यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो सैनिक को सिर्फ इतना करना है कि वो कंपनी कमांडर या फिर बटालियन कमांडर या फिर जो भी कोई वरिष्ठ अधिकारी हो उसे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन सैनिक ने शिकायत के लिए जो तरीका अपनाया है वो सबसे अच्छा नहीं है। थल सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि सेना के सभी कमांड और मुख्यालयों में शिकायत पेटिका रखी है, जिसे कोई भी शिकायत हो उसके द्वारा मुझसे शिकायत कर सकता है और इस बॉक्स में डाले गए सभी शिकायती पत्र सीधे मेरे द्वारा खोले जाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि कल बीबीसी इंडिया बोल का क्या है विषय।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या सैन्य बलों में सैनिक की कोई इज्जत है या उसे सिर्फ राष्ट्र सम्मान का प्रतीक बनाकर छुट्टी पाली गई है? पिछले दिनों कुछ सैनिकों ने सोशल मीडिया पर आंखें खोलने वाले वीडियो जारी करके खराब स्थितियों की शिकायत की। सेना प्रमुख ने अब कहा है कि सैनिक सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि सीधे उनसे शिकायत करें। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई सैनिकों की किसी को परवाह नहीं है? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 14 जनवरी शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का कार्यक्रम दिन भर। हर साल भारत से हज पर जाने वाले मुसलमानों को सरकार सब्सिडी देती है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने सब्सिडी के रूप में लगभग 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, मगर इसे लेकर राजनीतिक हलकों और मुस्लिम समाज में बहस शुरू है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो हज पर दी जाने वाली सब्सिडी की जरूरत की फिर से समीक्षा करे। पूरे प्रकरण पर बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
भारत में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हज को लेकर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर एक समिति का गठन किया है। समिति ये पता लगाएगी कि क्या हज पर जाने वालों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी जायज है। हालांकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सऊदी अरब द्वारा हज के कोटे को बढ़ाए जाने से काफी खुश
है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि जो 2017 का हज होगा उसमें लगभग 34,000 से ज्यादा हिंदुस्तान के हाजी हज करने और जा पाएंगे। हम मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के मुल्कों के साथ हिंदुस्तान के बहुत बेहतर मजबूत रिश्ते बना रहे हैं, उसका एक बहुत पॉजिटिव असर कल की मीटिंग में भी हमारे दिखा।
मगर इसी बीच मंत्री की खुशी के इजहार से हटकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर हज की सब्सिडी को खत्म करने की मांग दोहराई।
भारत इसमें आखिर क्यों गवर्नमेंट किसी भी मजहबी फेस्टिवल में या पैसा क्यों लगा? मैं मरता हूं तो मेरा स्टैचू बनेगा, मैं मरता हूं तो मेरे नाम से पार्क बनेगा। अरे गरीब को रहने को जगह नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है और आप मेरे नाम पर इंडिया को दे रहे हैं। इस मुल्क में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा किसी पार्टी का नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम का है और ये पैसा किसी भी मजहबी फेस्टिवल में कल्चरल के नाम पर उसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
असदुद्दीन ओवैसी की मांग के बाद एक बार फिर मुस्लिम समाज में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके के रहने वाले लोगों में इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ मानते हैं कि सब्सिडी मिलनी ही चाहिए।
सब्सिडी जो है वो तो जो लेना चाहे ले, लेना चाहे तो मना कर सकता हो, हमें नहीं चाहिए। वैसे तो जो गवर्नमेंट की तरफ से है अलाव है तो देनी चाहिए उनको। जब गवर्नमेंट दे रही है तो उसको ना क्यों कर रहा है? और गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है तो वो तो हाजियों के लिए सहूलत है ना।
मगर समाज का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो सब्सिडी पर पूरी तरह से रोक की हिमायत कर रहा है। इनमें से एक है मोहम्मद ताज, जो कहते हैं कि जो हज करने के लिए 2,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा हो उसे 3,000-4,000 रुपए और खर्च करने में क्या हर्ज है?
2,50,000 रुपए जो खर्च कर रहा है उसके लिए 5,000 रुपए या 10,000 रुपए मायने नहीं रखते हैं और वो ये इस पैसे को इसमें इंक्लूड भी ना करे। अपने पैसे से जब वो जा सकता है तो 10,000 और खर्च करके जाए, सब्सिडी नहीं चाहिए।
असदुद्दीन ओवैसी की तरह ही जामा मस्जिद के इलाके के रहने वाले मोहम्मद ताबू कहते हैं कि हज के लिए सब्सिडी देने की बजाय सरकार उस पैसे को गरीबों के कामों के लिए लगाए
और ये पैसा जो है ना किसी गरीबों पे जाके लग जाए, मदद किसी की हो जाए, मुसलमानों की जो गांव देहातों में गरीब आदमी है और जो जा रही है एक मालदार आदमी जा रही है 2-4 लाख रुपए खर्च करके गवर्नमेंट के 2-4 हजार रुपए कोई लेगा वो।
हालांकि मुस्लिम समाज में इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है, मगर सबको भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति की रिपोर्ट का इंतजार भी है। समाज के ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्हें हज के लिए किसी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
और अब वक्त है विवेचना का। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लेफ्टिनेंट जनरल जेक फार्ज रफेल जैकब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनको ही फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की व्यवस्था के लिए ढाका भेजा था। उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। जनरल जैकब की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
16 दिसंबर 1971 की दोपहर, ढाका में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हथियार डालने से पहले पाकिस्तानी सेना के चोटी के अफसर दिन का खाना खा रहे थे। ऑब्जर्वर अखबार के संवाददाता गाविन यंग मेस के बाहर खड़े थे। उन्होंने वहीं खड़े हुए जनरल जैकब से पूछा, सर मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूं? सब लोग अंदर पहुंचे। जैकब ये देखकर दंग रह गए कि डाइनिंग हॉल में करीने से मेजें लगी हुई थी, कांटे छुरी और नैपकिन सजे हुए थे। जैकब को खाने की दावत दी गई, लेकिन जैकब का खाने का मन नहीं हुआ। वो उसी कमरे के कोने में अपने सहायक कर्नल एमएस खाड़ा के साथ खड़े होकर बात करने लगे। पाकिस्तानी अफसरों ने बहुत लुत्फ लेकर रोस्टेड चिकन खाया। बाद में गाविन यंग ने अपने अखबार में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था सरेंडर लंच। उसी दिन की सुबह पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल JFR जैकब के फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर भारतीय सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। कुछ साल पहले मुझसे बात करते हुए जनरल जैकब ने बताया था,
मानेकशॉ फोन्स, जेक गो एंड गेट अ सरेंडर। आई सेड आई हैव ऑलरेडी सेंट यू अ ड्राफ्ट सरेंडर डॉक्यूमेंट, डू आई नेगोशिएट ऑन दैट? ही सेड यू नो व्हाट टू डू, जस्ट गो।
मानेकशॉ ने मुझे फोन किया, जेक जाओ और सरेंडर लो। मैंने कहा मैं आपको पहले ही आत्मसमर्पण का मसौदा भेज चुका हूं, क्या मैं उसके आधार पर पाकिस्तानियों से बात करूं? सैम बोले, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस तुम वहां जाओ। मैं वही दस्तावेज लेकर ढाका पहुंचा। ढाका हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मार्क हेनरी ने मेरा स्वागत किया। उन्होंने पेशकश की कि वो सरकार पर नियंत्रण करने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनकी पेशकश स्वीकार नहीं की। पाकिस्तान सेना ने मुझे लेने के लिए एक ब्रिगेडियर को कार के साथ भेजा हुआ था। जैसे ही हम पाकिस्तानी कार में आगे बढ़े, मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने हमारी कार पर गोली चलाई। मैं कार का दरवाजा खोलकर चिल्लाया, इंडियन आर्मी। उन्होंने फायरिंग तो रोक दी, लेकिन वो मेरे साथ चल रहे ब्रिगेडियर को मार डालना चाहते थे। किसी तरह उन्हें समझा बुझा कर नियाजी के दफ्तर पहुंचे। जैसे ही मैंने उन्हें आत्मसमर्पण का दस्तावेज पढ़कर सुनाया, नियाजी बोले, कौन कह रहा है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं? मैंने उन्हें कोने में बुलाया और उनसे कहा, मैंने आपको बहुत अच्छी शर्तें दी हैं, अगर आप हथियार डालते हैं तो हम आपका और आपके परिवार वालों का ध्यान रखेंगे। नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मैं आपको सोचने के लिए 30 मिनट का समय देता हूं। ये कहकर मैं कमरे से बाहर चला आया। मैंने सोचा, मैंने ये क्या कर दिया? उनके पास ढाका में 26,400 सैनिक थे, जबकि हमारे पास सिर्फ 3,000, वो भी ढाका से 30 किलोमीटर की दूरी पर।
जब जैकब आधे घंटे बाद कमरे के अंदर घुसे तो वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर रखा हुआ था।
Suppose he says no, what do I do? Aurora is going to land, ceasefire expires, what's going to happen if he doesn't agree? I went in after 30 minutes.
मैंने सोचा अगर ये ना कह देते हैं तो मैं क्या करूंगा? एक घंटे में अरोड़ा वहां लैंड करने वाले थे। मैंने नियाजी से पूछा, क्या आप आत्मसमर्पण की शर्तों को स्वीकार करते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 3 बार उनसे यही सवाल किया, तब भी कोई जवाब नहीं आया। तब मैंने आत्मसमर्पण के दस्तावेज को ऊपर उठाकर कहा, आपके जवाब न देने का मतलब है कि आप इसे स्वीकार करते हैं।
जैकब ने नियाजी से कहा कि आत्मसमर्पण समारोह रेस कोर्स मैदान में ढाका की जनता के सामने होगा। नियाजी इसके लिए तैयार नहीं हुए। फिर जैकब ने नियाजी से कहा कि वो तलवार का सरेंडर करें।
See, I told Niazi to surrender his sword. He said, I don't have a sword. So I just surrender your pistol. So he took off his pistol, tears in his eye and gave it to Aurora. That's all.
मैंने नियाजी से कहा कि वो तलवार सरेंडर करें। उन्होंने कहा, मेरे पास तलवार नहीं है। तब मैंने कहा कि आप अपनी पिस्टल सरेंडर करें। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और भरी हुई आंखों के साथ अरोड़ा को सौंप दी। जब दस्तखत करने का समय आया तो नियाजी के पास कलम नहीं था। वहीं बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो के संवाददाता सुरजीत सेन ने अपना कलम पेश किया। इस बीच दोनों जनरलों के बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ। दस्तखत होते ही वहां मौजूद भीड़ नियाजी को मार डालना चाहती थी। हमने उनके चारों ओर एक घेरा बना दिया और फिर एक जीप में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया।
1923 में कोलकाता में जन्मे जनरल जैकब यहूदी परिवार से आते थे। 1942 में भारतीय सेना में आए जनरल जैकब ने दूसरे विश्व युद्ध में मध्य पूर्व, बर्मा और सुमात्रा की लड़ाई में भाग लिया था। 15 कोर की कमान संभाल चुके लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जनरल जैकब को बचपन से जानते थे और उन्हें अंकल जेक कहकर पुकारते थे।
पहली दफे जब मैं उनसे मिला था 1961 की बात, मैं उससे पहले हमारे खानदान के साथ उनका नाता 1951 से जुड़ गया था, जबकि वो अहमदनगर में मेरे वालिद साहब के साथ वो पोस्टर थे और बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। 1961 में वेलिंगटन नीलगिरीज तमिलनाडु में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जो बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूशन है इंडियन आर्मी का, वहाँ पर दोनों पोस्टर थे और मैं वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। जनरल जैकब तो बैचलर थे ही, जैसे आपको मालूम है, उनके साथ उनके एक मित्र थे जनरल हरी शिंगल। हर वक्त आना जाना हमारे घर में होता था इन दोनों का, क्योंकि ये लोग तो बैचलर क्वार्टर्स में रहते थे और इनको खाना जो भी मेस का मिलता था वो खाते थे, मगर अक्सर शाम की का वक्त जो था इनका आमतौर पर बिताया जाता था हमारे घर में, जहाँ पर शेर व शायरी होती थी और जोक्स क्रैक किए जाते थे। और जब भी ये रात के वक्त पिक्चर देख के कभी आते थे 11:30-12 बजे, उनको खाना नहीं मिलता था तो आकर आमतौर पर मेरी माँ से ये विनती करते थे कि हमें कुछ खाना दे दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनरल जैकब जो थे उनके अर्ली ईयर्स एफ्टर द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर, अब मेरी रिमेम्बरेंस है वो प्राइमरली एक वन ऑफ फन लविंग पर्सन, केयरफ्री पर्सन बट हाईली प्रोफेशनल। अदरवाइज खेल जानते थे बहुत से, वो उनकी हॉबीज जो थी फिशिंग, एंगलिंग, एक उनसे ही मैंने सीखी एंगलिंग, और पहला उन्होंने मुझे एंगलिंग का जो टैकल था सबसे पहले जिंदगी में किसी ने मुझे दिया तो उन्होंने दिया था मुझे।
जैकब बहुत अच्छे चित्रकार थे और उन्हें एंटीक चीजें जमा करने का भी शौक था। उनको कविताएं पढ़ना भी बहुत पसंद था और वो ब्रिज खेलने के भी शौकीन थे।
उन दिनों में भी ये आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करते थे और आई थिंक बहुत अच्छे वेल ट्रैवल्ड इंडिविजुअल थे, तो इनके पास दुनिया भर की चीज़ें थी। और खासियत इनकी थी कारपेट्स, पर्शियन कारपेट्स, इनके पास एक कलेक्शन ऑफ पर्शियन कारपेट्स था जो बाद में मैंने इनके घर में देखा नहीं जब मैं ये सोम विहार में रहते थे, ना मैंने इतने ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स देखे, तो वो कहीं ना कहीं एयरलूम के तौर पर कहीं रखे होंगे। मगर हर अच्छी चीज़ दुनिया की, द फाइनर पॉइंट्स ऑफ लाइफ के ये अप्रिशिएटर थे हर वक्त। और खाने में मुझे ये याद है कि जब ये पूना में थे और हम लोग, हमारा ख़ानदान वेलिंगटन से हम कार में चला कर आ रहे थे दिल्ली आ रहे थे, हमारे सेंटर लैंसडाउन जा रहे थे, तो रास्ते में इनके साथ रुके और ये पहले दफ़े हम लोगों को खाने के लिए ले गए दुराबजी रेस्टोरेंट में, बड़ा मशहूर पारसी रेस्टोरेंट जो है पुणे कंटोनमेंट का, और वहाँ मैंने ज़िंदगी की पहली नान खाई, मुझे याद है। और हर अच्छा नॉन वेजिटेरियन डिश जो आप सोच सकते हैं बस उस दिन हाजिर था। तो इनको मालूम था कि किस तरह की चीज़ों में मज़ा आता है लोगों को, जो अच्छे वेल हील्ड लोग हैं वो कैसे इंजॉय करते हैं। ही वॉज एक्चुअली वेरी वेरी गुड एट दैट। आपको मालूम होना चाहिए कि शायद फौज में आमतौर पर ब्रिज को एक इंटेलेक्चुअल गेम समझा जाता है, बहुत दुनिया भर में ही समझा जाता है, एंड जनरल्स जो हैं खासतौर पर इनको बहुत पसंद होता है खेलना, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यू नो मैनिपुलेटिंग योर ओपोनेंट, उसके बारे में होता है। तो हर दोपहर को ये लोग बैठ कर खेला करते थे। एंड वेलिंगटन जैसी जगह में वक्त बहुत कम मिलता है इंस्ट्रक्टर को, क्योंकि बहुत करेक्शन का काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स का जो सबमिशन होता है, तो वो इंस्ट्रक्टर जो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर हों, जो बहुत जल्दी करेक्शन करते हैं और बहुत क्विक ऑन दी अपटेक हैं, वही ब्रिज खेलने के लिए उनको वक्त मिलता है। सो आई डू रिमेंबर के इनको वक्त मिलता था और मेरे वालिद साहब को वक्त मिलता था, सो दे आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी वेरी कॉम्पिटेंट पीपल।
1997 में जब उनकी किताब सरेंडर एट ढाका छपी तो उसमें उनकी एक टिप्पणी से काफी बवाल मचा कि मानिक शाह ने ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना को दिया ही नहीं। मैंने जनरल जैकब से पूछा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते थे।
आई डोंट नो व्हाट हिज रीजंस वर, ऑल आई नो दैट द ओनली ऑर्डर्स आई गॉट वर टू टेक खुलना एंड चिटागोंग। वी हैड अ लॉन्ग आर्गुमेंट। आई टोल्ड हिम खुलना वाज ओनली अ माइनर पोर्ट, अ रिवर पोर्ट।
मैं नहीं जानता था कि इसके पीछे कारण क्या थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे सिर्फ खुलना और चटगांव पर कब्जा करने का आदेश मिला था। मेरी उनसे लंबी बहस हुई। मैंने कहा कि खुलना एक छोटा सा नदी बंदरगाह है और चटगांव का भी कोई बहुत ज्यादा सामरिक महत्व नहीं है। अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमें ढाका पर कब्जा करना ही होगा। मानेकशॉ बोले, अगर हम खुलना और चटगांव ले लेते हैं तो ढाका अपने आप गिर जाएगा। मैंने पूछा, कैसे? ये तर्क चलते रहे और हमें सिर्फ खुलना और चटगांव पर कब्जा करने के लिए ही लिखित आदेश मिले। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल इस बात की पुष्टि करते हैं कि ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य भारतीय सेना के सामने कभी रखा ही नहीं गया। हमारा लक्ष्य था बांग्लादेश की निर्वासित सरकार के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना।
बाद में जनरल जैकब की इस बात पर काफी आलोचना हुई कि शायद वो 1971 के युद्ध की सारी वाहवाही खुद लेना चाह रहे थे और फील्ड मार्शल मानेकशॉ के योगदान को कम करके आंक रहे थे। जनरल अता हसनैन इस बात को सही नहीं मानते।
चीफ ऑफ स्टाफ कमांड, जो अपॉइंटमेंट था उनका उस वक्त, एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दिल्ली में, इसके बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर मैं कैप्टन हूं, आई मे हैव अ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन एंड ओपिनियन विद माय आर्मी चीफ, पर इसका मतलब नहीं कि मेरा परसेप्शन जो है वो सही है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आई थिंक जो जनरल जैकब साहब कहते थे वॉज ए ओपिनियन विच ही वॉज एक्सप्रेसिंग, एंड उसको हमें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एंड इट्स अ गुड थिंग, किताब में आप लिखिए अपना आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, किताब आपकी है, आप अपने थॉट्स, अपने विचार जो हैं उनको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वहाँ पर। तो आई थिंक नथिंग रॉन्ग इन एक्सप्रेसिंग दैट। ये मेरे ख्याल में मीडिया ने बाद में इसके ऊपर ज़्यादा बात बढ़ाई कि ही हैड अ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन विद द फील्ड मार्शल। मैं आपको इतना बताऊं कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ वॉज द कमांडेंट ऑफ स्टाफ कॉलेज 1961। वो जनरल जैकब को बेहद चाहते थे, ये मैं विद कॉन्फिडेंस आई कैन टेल यू दिस, क्योंकि अमंग द फेवरेट इंस्ट्रक्टर्स मेरे वालिद साहब एक उनके बड़े फेवरेट इंस्ट्रक्टर थे और जनरल जैकब भी थे उनमें से एक, एंड ही यूज्ड टू नॉर्मली रिलाई ऑन दिस फ्यू इंस्ट्रक्टर्स टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर हिम। और जब सैम मानेकशॉ खुद ही ईस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर थे तो उन्होंने इनको चीफ ऑफ स्टाफ मांगा था। दैट इज हाउ जैकब साहब पहुंचे एज चीफ ऑफ स्टाफ टू कलकत्ता। तो पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त थी, प्रोफेशनल डिफरेंसेस इस तरीके के स्ट्रेटेजिक मैटर्स में जनरल्स के बीच में बहुत दफे आते हैं, बट दैट डज नॉट अफेक्ट रिलेशनशिप्स इन एनी वे।
जैकब की मौत से कुछ महीने पहले मैंने उनसे पूछा कि 16 दिसंबर 1971 की रात को जब आप ढाका से कोलकाता वापस लौटे तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे।
मैंने सोचा जो हमारा जवान उसका जान दिया, who died in action, उनके लिए हमारा थॉट्स था। We lost 1,400 killed, 4,000 wounded, हमारा थॉट्स उनके लिए था। देश उनको पूरा क्रेडिट नहीं देता, देने चाहिए। We should remember them. They made the जवान्स, ये जवान उनका बहादुरी से बांग्लादेश आज़ादी किया।
जनरल जैकब 1978 में सेना से रिटायर हुए। बाद में उन्हें गोवा और पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। जैकब की जितनी इज्जत भारत में थी उतनी ही इसराइल में भी। जॉन कॉल्विन की यहूदी सैनिक हीरोज पर लिखी किताब लायंस ऑफ जूदा में जनरल जैकब का भी जिक्र है। इसराइल के सैनिक म्यूजियम में भी जनरल जैकब की वर्दी अभी तक टंगी हुई है। वो भारत और इसराइल के बीच मजबूत रिश्तों के पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने इसराइल जाकर बसने के सभी ऑफर्स को नामंजूर कर दिया था। उनका कहना था, मुझे यहूदी होने पर गर्व है, लेकिन मैं भारतीय था और हमेशा भारतीय रहूंगा और इसी जमीन पर मैं अपनी अंतिम सांस लेना चाहूंगा। रेहान फतल, बीबीसी दिल्ली।
जनरल जैकब की कहानी। और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सेना के जवानों से कहा है कि वो अपनी शिकायतें सीधे उनके पास भेजें। इसके लिए सुझाव और शिकायत बॉक्स की व्यवस्था की जा रही है। समाजवादी पार्टी में जारी तकरार के बीच दोनों गुटों की निगाहें अब चुनाव आयोग पर हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा जताने के लिए आज मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के वकीलों ने चुनाव आयोग के सामने तर्क रखे। जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में तमिलनाडु के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। इराक से मिली रिपोर्टों के मुताबिक मोसूल से इस्लामिक स्टेट को बाहर करने के अभियान में जुटी इराकी सेना ने अहम प्रगति हासिल कर ली है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।